नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मंथन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नशा मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष 16,900 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर बरसात और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कई जगह रिमझिम बारिश का दौर जारी। और युवा दिवस के अवसर पर कल जयपुर में होने वाले रोजगार उत्सव में 13,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आज उदयपुर में महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े राष्ट्रीय चिंतन शिविर का औपचारिक उद्घाटन करते हुए उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न पहलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ियों के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। बाल संरक्षण योजनाओं का बजट वर्तमान में लगभग 1500 करोड़ रुपए हो गया है, जो वर्ष 2009 में 60 करोड़ था।
हमारा उद्देश्य वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर है। देश की आबादी में महिलाओं और बच्चों का सामूहिक रूप से लगभग 70% से अधिक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एक उल्लेखनीय प्रयास है, जिसके तहत अब तक 3,69,00,000 से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 16,400 करोड़ रुपए की मातृत्व लाभ की राशि प्राप्त हुई है। इसी तरह इस वर्ष भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही नीतिगत निर्णयों और भविष्य की कार्य योजनाओं के बारे में भी बताया।
3 मिनट गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से हमने राजस्थान में दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अंतर्गत प्रथम संतान के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने हमारी इन्हें बढ़ाकर के इसको 6,500 रुपए किया है, हमने इसको बढ़ाया। इसी तरह साथ ही दिव्यांग गर्भवती महिला के लिए इसे हमने बढ़ाकर के 10,000 रुपए किया। इसी प्रकार द्वितीय संतान बालिका होने पर भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए आर्थिक सहायता मातृवंदन योजना के अंदर उपलब्ध कराया जाता है।
प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 45,00,000 लाभार्थियों को माइक्रो न्यूट्रिएंट 45 पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। किशोरी बालिका योजना के तहत 5 जिलों जैसलमेर, भोलपुर, करौली, सिरोही और बारा में 45,000 किशोरियों को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए दूध पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्री स्कूल एजुकेशन क्लब में लगभग 17,00,000 बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधि आधारित पुस्तकों की शाला पूर्व तैयारी कराई जा रही है।
चिंतन शिविर में मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति और मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के साथ ही पोषण 2.0 अभियान पर चर्चा की जा रही है। इन सत्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। चिंतन शिविर का समापन कल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये आजादी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि लगभग 24,00,000 किलो नशीले पदार्थ जब्त किए गए, वहीं पिछले 10 साल में 56,800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के मादक पदार्थ पदार्थ नष्ट किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नशा मुक्ति के लिए हर प्रयास कर रही है।
भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है तो नशा मुक्त भारत के सिद्धि के बगैर ये नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों सरकारें के सभी संबंधित विभागों ने मनोयोग के साथ योगदान देकर परिश्रम कर ये विजय हमने प्राप्त करनी ही पड़ेगी।
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। ये पखवाड़ा 25 जनवरी तक चलेगा। भारतीय हज समिति ने इस साल की हज यात्रा की दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। इसमें विभिन्न राज्यों से 3,676 आवेदकों को अस्थायी सीटें आवंटित की गई हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इन आवेदकों को 23 जनवरी से पहले हज राशि के रूप में 2,72,300 रूपये जमा कराने होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में आज श्रीगंगानगर, पाली, हनुमानगढ़ और राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। नीम का थाना के उदयपुरवाटी, श्रीमाधोपुर और पाटन इलाकों में रिमझिम बरसात हो रही है। वहीं करौली में कुछ जगह बूंदाबांदी हुई। श्रीगंगानगर में आज दूसरे दिन भी हल्की बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम में अचानक आए इस बदलाव और घने कोहरे से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है।
सुबह से ही बादलवाही और शीतलहर का असर बना हुआ है। दोपहर होते होते हल्की बरसात का दौर शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है। बूंदाबांदी के बीच पूरा इलाका फिलहाल कोहरे की चपेट में है। मावठ और कोहरे के चलते ठंड का असर काफी बढ़ गया है। यह मावठ रबी की फसल के लिए अमृत के समान है। वहीं मौसम में आए परिवर्तन के कारण इंसान से लेकर जानवर तक प्रभावित नजर आए। रोजमर्रा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड और बरसात के चलते अधिकांश लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
बारां और सवाई माधोपुर में दिनभर बादल छाए रहे और सर्द हवाएं चली। कोहरे से दृश्यता काफी कम है। डीग में भी कोहरे का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी कुछ घंटे जारी रहेगा।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 8-10 घंटों तक खासकर उत्तरी राजस्थान के वो इलाके हनुमानगढ़, गंगानगर, इसके अलावा शेखावट जिले तक के इलाके, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश जारी रहने की संभावना है। इसका असर 12 जनवरी को राज्य के अधिकांश भागों के साथ होगा। एक बार फिर से ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क होगा। हालांकि अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाए रहने से दिन के तापमान में कमी होगी और दिन में ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। इसके बाद एक और नया पश्चिम विक्षोभ 14-15 जनवरी को सक्रिय होगा। इसके असर से उदयपुर, कोटा संभाग की ओर एक बार फिर से आप देखेंगे 14-15 जनवरी को कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
सर्दियों के मौसम में हमारे खान पान में बदलाव होता है। राजस्थान में सर्दियों के भी पारंपरिक व्यंजन हैं और इन दिनों मशहूर पकवानों की बहार है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में शीत ऋतु में मोटे अनाज यानी मिलेट्स का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। मोटे अनाज के प्रति दुनिया भर में जागरूकता के साथ ही इनका इस्तेमाल भी बढ़ा है। राज्य में इस मौसम में बाजरे की राब और खिचड़ी, मूंग की दाल का हलवा, गोंद और तिल के लड्डू, गजक, तिलपट्टी और कच्ची हल्दी की सब्जी भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। पोषण से भरपूर इन व्यंजनों से ऊर्जा मिलने के साथ ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिप्रेक्ष्य में आज युवा और खेल मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खड़से का राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 और विकसित भारत युवा नेता संवाद पर लिखा एक लेख साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत युवा युवा नेता संवाद देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनोखी पहल है। इधर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का कल समापन होगा। इस मौके पर विभिन्न श्रेणियों में यूथ आइकन अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। युवा दिवस के मौके पर जयपुर में रोजगार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13,500 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें चिकित्सा, वित्त, गृह, राजस्व तथा शिक्षा विभाग में विभिन्न नियुक्तियां शामिल हैं। जयपुर के बिड़ला सभागार में होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव से सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस आम लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में आज पाली में आम लोगों और स्कूली बच्चों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में बताया गया। पुलिस ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाले ठगी से सचेत रहने को कहा है। जिले के सिनेमाघरों में अब फिल्म शुरू होने से पहले साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्लिप दिखाना अनिवार्य किया गया है। जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से कल्चरल डायरीज कार्यक्रम के तहत अल्बर्ट हॉल पर आज डिवाइन रिदम संध्या हो रही है। इसमें महेशाराम और उनके साथी कलाकार भक्ति गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं शहर के जवाहर कला केंद्र में आज ध्रुपद गायन समारोह आयोजित किया जा रहा है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सहयोग से हो रहे इस आयोजन में सुनीता अमीन और पद्मश्री वासुफुद्दीन डागर का ध्रुपद गायन हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मंथन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नशा मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले साल 16,900 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर बरसात और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कई जगह रिमझिम बारिश का दौर जारी। और युवा दिवस के अवसर पर कल जयपुर में होने वाले रोजगार उत्सव में 13,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।